भौतिक जगत में हम सब लोग क्या है, कुछ ना कुछ नियंत्रण करते हैं। इसके कारण ईश्वर शब्द का अर्थ होता है जो नियंत्रण करते हैं। तो भौतिक जगत में कुछ ना कुछ नियंत्रण करते हैं, इसलिए ईश्वर बनते हैं। आजकल मोबाइल नियंत्रण करते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में ऐसे लेकिन दुनिया उनके मुट्ठी में नहीं रहता। आप भौतिक, हम लोग भौतिक प्रकृति के मुट्ठी में हैं बस। तो थोड़ा बहुत ऐसे भगवान स्वतंत्रता देते हैं, उसके कारण हम छोटे छोटे ईश्वर बनते हैं। लेकिन भगवान महेश्वर या भौतिक जगत में देवी देवताएं हैं, वो लोग भी कुछ ना कुछ नियंत्रण करते हैं। लेकिन भगवान क्या है, महेश्वर है। और इसलिए ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सो ईश्वर परम कृष्ण, वहां पर भी भगवान को परम ईश्वर कहा गया। सो ईश्वर परम कृष्ण, वो सिर्फ साधारण ईश्वर नहीं है, वो परम ईश्वर है। सो परमेश्वर, भारत में ऐसे ये नाम भी अलग अलग हो जाते हैं ना, शिवजी को परमेश्वर बोलते हैं, ऐसा है कि ना, बहुत जगह पर ना? तो महेश्वर, महेश मतलब वो शिवजी का नाम है, महेश्वर महाईश, तो परमेश्वर महेश्वर। लेकिन अंत में वो भगवान कृष्ण, आप वास्तविक उसका अर्थ देखेंगे तो वो भगवान कृष्ण है। और ब्रह्म संहिता में सीधा उनका नाम बताएगा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंद सर्व कारण कारणम। और हालांकि वो मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं, एक मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, फिर भी उनका जो स्वरूप है वो साधारण नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, जनरली उपहास, भगवान कृष्ण का उपहास कैसे करते हैं लोग बताइए। प्रमुख मूर्ख लोग भगवान को कैसे उपहास करते हैं, किन लीला के संबंध में उनको उपहास करते हैं, शेष करके एक है रासलीला और दूसरा यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं। A friend of Arjuna is a politician involved in battle of Kurukshetra. तो वो उसको क्या कहते हैं, वो बड़ा राजनीतिज्ञ, बहुत राजनीति किया भगवान ने, इससे उनको पास करते हैं। सो हम लोगों ने बहुत उसके बारे में भी चर्चा किया, रासलीला है कि नहीं, वो चर्चा कर रहे थे ना, पतिम वो श्लोक आता है, यज्ञपति प्रजापति दियांपति, वो सबके पति है नहीं। और भगवान के ऐसे लीलाओं को हमें नकल नहीं करना चाहिए, उनके आदेश को पालन करना चाहिए। और हालांकि वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में इस जगत में प्रकट होते हैं, लेकिन फिर भी उनका स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद होता है। सच्चिदानंद स्वरूपाय कृष्णाय तम एकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम, ये दोनों श्लोक क्या है, कहाँ आया, तो गोपाल तपनी उपनिषद में आया। तो और उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया कि क्यों क्यों ये लोग समझते नहीं हैं भगवान को, हम लोगों ने चर्चा किया ना उनको अचिंत्य शक्ति के बारे में, मतलब क्यों ऐसे ये लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, मूर्ख लोग, क्योंकि मूढ़, क्योंकि ये लोगों को भगवान के शक्तियों के बारे में ज्ञान नहीं होता, वो हम लोगों ने चर्चा किया है। तो उसके बारे में प्रभुपाद या तात्पर्य में लंबा वर्णन करते हैं। हम लोगों ने चर्चा किया कि कैसे वो शक्ति का ज्ञान ना होने के कारण मन में एक ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि भगवान हमारे जैसे व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए वो नियंत्रण नहीं कर सकते हैं ऐसे। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद कुछ शास्त्रों से उल्लेख करते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण एक साधारण व्यक्ति नहीं, हालांकि वो मनुष्य रूप में इस जगत में आते हैं, फिर भी वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो जब नैमिषारण्य के जो ऋषि थे, शौनक आदि ऋषि, वो लोग, उनको पता है कहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं? तो नौवें अध्याय के 11वें श्लोक में, नौवें अध्याय के 11वें श्लोक, ठीक है। प्रभुपाद कहते हैं ये जो भगवान को सामान्य व्यक्ति मानना, ये एक और गलत धारणा को जन्म देता है, वो है कि भगवान निराकार है करके, कि वो हमारे जैसे शरीर को धारण करके इस जगत में प्रकट हुए हैं और अंत में हम सब लोग निराकार में बन लीन हो जाएंगे, ऐसे धारणा को। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं गीता भागवत जैसे ग्रंथों से, शास्त्रों से हमें पता चलता है कि हालांकि भगवान साधारण व्यक्ति के रूप में इस जन्म लेते हैं, लेकिन वो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो नैमिषारण्य के जो ऋषि, शौनक आदि ऋषि, वो पहले अध्याय में ही 6 प्रश्न हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, भगवान कृष्ण इस धरातल पर बलराम जी के साथ जन्म लेके क्या क्या कार्य किया है, उनको बारे में वो जानना चाहते हैं, उनकी लीला उनके बारे में। तो उसमें वो कहते हैं अति मर्त्यानी, यहाँ पर वो श्लोक उल्लेख करते हैं ना, कृतवान किल कर्माणि सह रामेन केशवा अति मर्त्यानी भगवान गूढ़ कपट मानुषः। सो इस श्लोक में हमारे इस भगवद्गीता के श्लोक में मानुषं तनुम आश्रित है, यहाँ पर गूढ़ कपट मानुषः, कपट मानुष्य मतलब मनुष्य के रूप में आए हो लेकिन वास्तव में वो साधारण मनुष्य थे, नहीं थे। तो अति मर्त्यानी भगवान गूढ़ कपट मानुष्य। सो आल्दो एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना वेश को धारण करके साधारण व्यक्ति की तरह बर्ताव, मतलब लेकिन फिर भी अति मर्त्यानी, सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज एक साधारण व्यक्ति नहीं करते कर सकते वैसे कार्यों को उन्होंने किया, तो इसलिए उन कार्यों के बारे में हमें बताइए ऐसे वो कह रहे। तो ये अति मर्त्यानी भगवान सह रामेन केशव, कृष्ण बलराम जी के साथ, भागवत में बार बार बलराम जी को राम करके संबोधित किया है। तो कृतवान किल कर्माणि, क्या क्या कार्य किया है उन्होंने, सो ऐसे वो कहते हैं। और तो मूर्ख लोगों को इस तात्पर्य में रूपा जी अलग अलग चीज बताते क्यों लोग मूर्ख लोग समझते नहीं, या दूसरे शब्दों में भगवान को एक साधारण व्यक्ति क्यों समझते हो, उसके बारे में वर्णन आता है। सो तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लोगों को मनुष्य के रूप में जब भगवान प्रकट हो जाते हैं वो भ्रमित कर देता है, मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो हालांकि कोई वो उन्होंने जो कार्य किए कोई सामान्य व्यक्ति मनुष्य नहीं कर सकते हैं, और भागवत में भी बताया गया है कि पहले वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हम लोग उसको चर्चा कर रहे थे ना, उनके जन्म और कर्म कैसे दिव्य होते हैं, जन्म कर्म च नहीं दिव्यम, कि कैसे वो सभी मुकुट को धारण करके, सभी आभूषण को धारण करके, चतुर्भुज में शंख चक्र गदा पद्म युक्त वो देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हो गए कंस के जेल में। तो फिर उसके बाद उन्होंने बभु अप्राकृत शिशु, एक ऐसे साधारण शिशु के बालक के रूप में वो रूप धारण किया, तो इसलिए वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। हालांकि साधारण रूप को धारण कर रहे लेकिन वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, वही चतुर्भुज रूप को भगवान कृष्ण ने ही चतुर्भुज रूप को अर्जुन को दिखाया 11वें अध्याय में। सो, फिर उसके बाद में वो एक मानुषम रूपम, मनुष्य के समान दो हाथों वाले रूप में प्रकट हो गए। सामान्यतः जब भगवान चतुर्भुज में प्रकट हो जाते हैं उनको व्यक्ति क्या करेंगे, उनको गलत नहीं समझेंगे, या लेकिन ऐसे असुर भी होते हैं जैसे हिरण्यकश्यप कंस वगैरह, कंस के अनुयायी उनको बोल रहे थे, कंस को उनको गुणगान कर रहे थे, बहुत शक्तिशाली है आपको क्या, सभी देवताएं भी डर जाते हैं और भगवान विष्णु भी ही आपके डर से वो सभी के हृदय में चुप गए हैं, ऐसे बोलते हैं उनका भी अब उपहास करता है ऐसे लोग, है ना। तो हिरण्यकश्यप भी हमेशा विष्णु के निंदा कर रहे थे, उनके वो बहुत ही क्रोधित था उनको मारने के लिए। लेकिन विशेष करके जब दो मनुष्य समाज में जब आते हैं, मनुष्य रूप में दो हाथों वाले रूप में आते हैं, तो लोग उनका बहुत ज़्यादा उपहास करते हैं। कभी कभी मायावादी लोग क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक उल्लेख करते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा, मैं सभी के हृदय में जीव के रूप में प्रकट हुआ हूँ, ऐसे वो लोग उसका उसका वास्तविक अर्थ क्या है, मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ, जैसे भगवान बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो इसको उल्लेख करके ये लोग क्या करते हैं, भगवान सबके हृदय में है इसलिए सभी जीव क्या है, भगवान है, सभी नारायण है, ऐसे दरिद्र नारायण फिलॉसफी है यही से शुरू हो गया ना। तो ऐसे धारणाओं से कि सबके हृदय में भगवान है, सबके हृदय में भगवान है, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा के बीच में अंतर है, दो पक्षी है ऐसे हम उपनिषद से। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, सबके हृदय में भगवान है मतलब जो जीवात्मा है वही भगवान है, ऐसे कहते हैं। तो और ये श्लोक को उल्लेख करते हैं, सर्वेषु भूतात्मा वस्तितः सदा, जीवों के आत्मा के रूप में मैं विद्यमान हूँ, ऐसे वो कहते हैं। तो लेकिन वो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विद्यमान है। तो ये सब चीज़ यहाँ से शुरू हो गया कि कैसे मानव सेवा, माधव सेवा, दरिद्र नारायण सेवा। तो नारायण कैसे दरिद्र होंगे, है ना, वो कैसे हो सकता है, वो तो लक्ष्मीपति है। तो ऐसे हमें समझना चाहिए। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी का उल्लेख करते हैं, उसको हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। अच्छा हो कि इस श्लोक का हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, ना कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है, अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्च मूर्ति पर ध्यान कर देता है और अन्य जीवों के समान सम्मान नहीं करता, वह व्रता ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। तो विशेष करके उस श्लोक में क्या आता है, तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 21वां श्लोक। इस श्लोक में क्या आता है पता है कि भगवान सबके हृदय में विद्यमान है, इसलिए सभी को सम्मान करना चाहिए, ऐसे बताया गया। हाँ, 329:21 वो है ना उस श्लोक, तो उसमें कैसे आता है, यहाँ पर आधा ही श्लोक उल्लेख करते हैं प्रभुपाद, लेकिन आप पूरा देखेंगे तो वहाँ पर ऐसे वर्णन आता है कि सभी जीवों को सम्मान करना चाहिए। लेकिन जीव गोस्वामी क्या कहते हैं, ये नवसखी भक्त होते हैं वो सिर्फ अर्चा विग्रह को सम्मान देते हैं, भक्तों को सम्मान नहीं देते। हम लोग आज सुबह पढ़ा ना तीन प्रकार के भक्तों को, तो नवसखी भक्त क्या है, सिर्फ भगवान के सामने दंडवत करने में रुचि लेता है, भक्तों के संग में नहीं आता है। ऐसे लोग आते हैं ना यहाँ पर, हम लोग बैठे रहते हैं चर्चा करते रहते हैं, लोग आके दंडवत करके चले जाते हैं, तो वो लोग भक्तों को सम्मान नहीं करते हैं ऐसे, या अन्य जीवों को सम्मान नहीं करते हैं। तो ऐसी भाव ऐसी लोगों को नवसखी भक्त कहा गया है, तो इनको शिक्षा देने के लिए ऐसे बताया गया है कि क्योंकि सभी क्या है, भगवान के सभी शरीर में जीवों में भगवान के परमात्मा रूप विद्यमान रहते हैं, इसलिए सबको सभी को सम्मान करना चाहिए। या हम लोग कोई सोया रहता है, हम लोग उनको छलांग मार के नहीं जाते, नहीं उनको पार करके नहीं जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है परमात्मा है अंदर, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, तो समझते हैं ना, वी डोंट क्रॉस एनी वन। तो या मंदिर के ऊपर विग्रह के ऊपर क्या होता है, वो गोपुर होता है, गोपुर क्यों होता है पता है, ताकि कोई वो वहाँ पर सबको पता चले कि यहाँ इसके नीचे भगवान है करके, हम लोग उसको पार नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जब कोई सोते रहते हैं या कोई बैठे रहते हैं उनके ऊपर ऐसे छलांग नहीं मार सकते हैं, तो उनको सबको सम्मान करना, सबके शरीर में भगवान है करके, सबका शरीर क्या है, एक मंदिर के समान है, ऐसे हमें समझना चाहिए। तो ये जीव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। नवदीक्षित भक्त अथवा अन्य भक्तों की उपेक्षा मंदिर में अर्च विग्रह का या भगवत भक्तों के तीन प्रकार है, जिनमें नव दीक्षित भक्त सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नव दीक्षित भक्त अन्य भक्तों की उपेक्षा मंदिर के अर्च विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं, अतः वे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता का सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है, इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर में के सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी अब उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी है जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। मानुषिम तन्माश्रितम, इसका अर्थ क्या है, एक और अर्थ भी बोल रहे प्रभुपाद यहाँ पर, जब लोग भगवान अर्चा विग्रह के रूप में सब आते हैं उनका भी उपवास करते हैं, है ना, तो ये क्या सब मूर्ति पूजा है, हाँ पत्थर है, तो इसको क्यों पूजा कर रहे हो तुम, हाँ ऐसे बहुत सारा ऐसे 19वीं सदी के अंत में 20वीं सदी के आरंभ में ऐसे कई सारे समाज सुधार आंदोलन शुरू हुए, जो समाज सुधार करना चाहते थे उनका ही सुधार होना चाहिए था ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जो समाज को सुधार करने के लिए सोच रहे हैं उनका ही सुधार होना चाहिए ऐसे। सो द रिफॉर्मर हिमसेल्फ नीड्स रिफॉर्म, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान के, हाँ वैसे हम लोग भी सुधारना चाहते हैं लेकिन भगवान के आदेश अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार। उनमें से कुछ लोग क्या किया, वो लोग दयानंद सरस्वती आर्य समाज के और राम मोहन राय ब्रह्म समाज का उन्होंने किया। ऐसे कई सारे लोगों ने ये मूर्ति पूजा का निंदा, विवेकानंद भी करता है ना मूर्ति पूजा का निंदा नहीं करता, वो दो तीन उनका और उसका माता का और पिता का छोड़कर अन्य मूर्ति क्या है सब उसको निंदा करेंगे। तो ये सब मंदिर वो लोग कहते हैं क्यों आप मूर्ति का पूजा कर रहे हैं, भगवान सब जगह है, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान सब जगह है तो भगवान मंदिर में भी होना चाहिए, अर्चा विग्रह में भी होना चाहिए, है ना। तो समस्या क्या है, बाहर आप देख नहीं सकते लेकिन अर्चा विग्रह में आप देख सकते हो। तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे, अर्चा विग्रह के बारे में हम लोग 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में, ठीक है। सो मोगाश मोगाश मोग कर्मानो मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी मूषिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। ऐसे मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। ऐसे लोग भगवान को जो उपहास करते हैं वो निष्फल, मोह आशा, उनकी आशाएं, उनके कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाते हैं। सो बैफल्ड, आशा निराशा हो जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। और तात्पर्य के अंत में वो पिछले श्लोक के बारे में बता रहे हैं। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, दिस स्मृति वैष्णव फॉलो दिस स्मृति, दिस वन जनरली श्री वैष्णवास फॉलो दिस। यो व्यक्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्य श्रुतस्मार्त विधानतः मुखं तस्यावलोक्यापि सचेलं स्नानमाचरेत्। उनका दर्शन भी करेंगे तो क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए, सचेलं वस्त्र के साथ नदी में डुबकी मार के आना जाए। बहुत अच्छा। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति या स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख लेता ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है, राक्षसीं असुरीं चैव। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए ब्रह्म में रहेगा। धीरे धीरे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमद्वयम्। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो पहले अभी दो श्लोकों में दुरात्मा के बारे में वर्णन किया, अभी महात्मा के दो श्लोकों में महात्मा के बारे में वर्णन करेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं महात्मा का पहला लक्षण होता है कि वह दैवी प्रकृति में आश्रित है। उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, माया शक्ति को भी दैवी शक्ति कहा गया। क्यों? क्योंकि वो भगवान से आता है और भगवान के मार्गदर्शन में वो कार्य करते हैं। उसके पीछे भगवान है, इसलिए उसको भी दैवेश। लेकिन यहाँ पर ये माया शक्ति नहीं है, ये अंतरंग शक्ति है। क्योंकि दैवी शक्ति जो माया शक्ति क्या है, भगवान को बुला देती है, लेकिन ये जो शक्ति है भगवान को हमें समझने के लिए सहायता करती है, या उनके शरण में जाने के लिए सहायता करती है, उनकी भक्ति से। ये भक्ति उनकी भक्ति का मूर्तिमान सो शक्ति है। ये भजन चनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिदं वयम्। तो दूसरा चीज हम लोगों को यहाँ पर जानना चाहिए कि जीवात्मा क्या है, उसको तटस्थ शक्ति कहा गया। विष्णु पुराण के अनुसार तीन प्रकार के भगवान के शक्ति होते हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो थट मीन्स आप जानते हैं ना, थट मतलब क्या है, ये पृथ्वी है और जल है, उसके बीच में जो है वो थट होते हैं उसको। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञात्यतता परा अविद्या कर्म संन्याय तृतीय शक्ति रिष्यते, ऐसे विष्णु पुराण में बताया गया परशर। तो वो जीवात्मा भौतिक शक्ति के अंतर्गत होता है या आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत। जब भौतिक शक्ति के अंतर्गत आ जाता है तो वो दुरात्मा बन जाता है, और आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, महात्मा बन जाता है, दैवी प्रकृति महाश्रिता। इसलिए भगवान ये अंतर है दोनों दुरात्मा और महात्मा बीच में। और भजन तनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमोहयम्। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो भक्त है, जो दैवी प्रकृति के आश्रय में है, अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं, ये जानकर कि वो सबका स्रोत है और अव्यय है, विनाशी है, ऐसे जानकर वो लोग अनन्य भाव से भगवान का सेवा करते हैं। अनन्य भाव से मतलब कभी भी वो पथभ्रष्ट नहीं होते हैं, कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होता है उनको। और प्रभुपाद जी और भी यहाँ पर कह रहे हैं, अनन्य भाव का अर्थ भगवान के अन्य रूपों को भी वो उसके उनके ऊपर भी उनको भी वो उनके ऊपर भी ध्यान नहीं करते, वो या उनका सेवा नहीं करते, सीधा भगवान को ही वो सेवा करते, वो अनन्य भाव है, ऐसे होते थे। तो विशेष करके ये गौड़ीय वैष्णव उनके बारे में बताए, जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं उनके बारे में। तो ऐसे बहुत सारे अन्य भक्त भी भगवान कृष्ण का पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो वृंदावन में नहीं जाएंगे। वृंदावन में जाने के लिए क्या होना चाहिए, भगवान कृष्ण को ब्रजवासियों के मार्गदर्शन में ही हमें भक्ति करना चाहिए। तो जैसे रूप गोस्वामी वगैरह है, तो ये वृंदावन के भक्त है, इनके बारे में ये सर्वोच्च भक्त है सभी प्रकार के भक्तों में, ठीक है। हम पिछले अध्याय में चर्चा कर रहे थे ना, महात्मा परमाम गतः, तो सर्वोच्च भक्त है वो वृंदावन के भक्त। और आगे क्या है, अगले श्लोक में भी वो महात्माओं के बारे में और वर्णन करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्त्याश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ये भी एक ऐसा श्लोक है जो प्रभुपाद जी मायावाद को खंडन करने के लिए उपयोग करते थे। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, कौन सा चर्चा कर रहे थे, दूसरे श्लोक को चर्चा कर रहे थे कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्ष अवगम धर्मम सुसुखम खर्तुम अव्ययम। अव्यय शब्द का क्या बोलते हैं, ये जो भक्ति है अव्यय है, उसका अंत नहीं होता है। एक बार मुक्त मायावादी लोग, वो लोग भी भक्ति करते हैं, लेकिन एक बार मुक्ति को प्राप्त करने के बाद सो वो कभी फिर से वो लोग सोचते हैं अभी भक्ति करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो वास्तव में भक्त लोग होते हैं, प्रभुपा जी कहते हैं उनका भक्ति हो सकता है, लेकिन ये जो सही में वास्तव में जो भक्ति है वो कभी अंत नहीं होता, वो अव्यय है। तो इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, हमेशा वो क्या करते हैं, भगवान का उपासना करते हैं। कभी कभी लोग ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे मीराबाई ने भगवान का भजन किया और भगवान में एक हो गए, या तुकाराम ने भजन किया वो भगवान में एक हो गए। हाँ, ऐसे कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। प्रभुपाद जी को 1976 में वो हैदराबाद में गए थे, वहाँ पर एक ऐसे मायावादी व्यक्ति प्रभुपाद जी के वो बारे में बहुत तर्क वितर्क कर रहा था। वो कह रहा था, हाँ ऐसे ही कह रहा था, वो अलग अलग नाम ले रहा था और बता रहा था वो लोग भगवान में एक हो गए। बोला प्रभुपाद जी कह रहे हैं तुम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, नित्य उक्त उपास होते हैं। भगवान क्या बोलते हैं वो हम लोग सुनते हैं, है ना, भगवद गीता में नित्य युक्त, ऐसा नहीं कि मुक्ति के बाद उपासना बंद हो जाए। उपासक, उपासना, उपास क्या बोलते हैं, उपास्य, वो सब शाश्वत है। इसी को सनातन धर्म कहते हैं ना, सनात शाश्वत धर्म कहते हैं। नित्य युक्त उपास होते हैं ऐसे यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं। और ये लोग क्या करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढव्रतः, सतत भगवान का कीर्तन करते हैं, या सतत वो हमेशा भक्ति के अंगों में लगे रहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैन लक्षण क्रियेत भगवत्यद्य तन्मन्नेदारितम। तो ऐसे कला महाराज वर्णन करते, ऐसे हमेशा एक न एक भक्ति के अंगों में वो लगे रहते दिन भर, ये महात्मा है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं और वे क्या है, यतंतस्य दृढ़ व्रत, और दृढ़ व्रत है, ऐसे दृढ़ व्रति कहते हैं। दृढ़ व्रत मतलब व्रत को पालन करना। क्या क्या व्रत को पालन करना, एकादशी व्रत को पालन करना, महीने में दो बार आता है उपवास करते हैं, आज एकादशी है, हम सब लोग आप सब लोग ऐसे दृढ़ व्रत को कर रहे हैं। और आचार्यों के आविर्भाव दिन, तिरोभाव दिन, भगवान के आविर्भाव दिन, तो उस दिन हम लोग सब उपवास करते हैं। उपवास, उपवास शब्द का क्या अर्थ होता है, उप मतलब नज़दीक, वास मतलब निवास करना, भगवान के नज़दीक निवास करना। तो इसका अर्थ क्या होता है, शारीरिक अवस्थाओं को कम करके भगवान के पास निकटतम उपवास करना। इसका अर्थ है ज़्यादा भगवान का श्रवण कीर्तन करना, ऐसे जो नवविध भक्ति में लग जाना ज़्यादा से ज़्यादा। उस दिन हम लोग उस दिन फिस्ट मनाते हैं ना। तो क्या होता है कि इन शारीरिक अवस्थाओं को कम, ज़रूरतों को कम करेंगे तो बहुत सारा समय बच जाता है। खाने में पकाने में कितना सारे समय से चला जाता है ना, कितना सारा समय जाता है ना। आप देखिए जिस दिन आप पूरा उपवास कीजिए उस दिन देखिए कितना सारा समय बच जाता है। तो इसलिए उसको उपवास कहते हैं, शारीरिक कार्यों को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन श्रवण कीर्तन में लगना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं एकादशी के दिन 25 माला जप करना चाहिए, ऐसे कम से कम 25 माला जप करना चाहिए ऐसे। तो ऐसे या वैसे ब्रह्मचारी तो लगे रहते हैं सब भक्ति के कारण। तो बाहर के भक्त ज़्यादा ऐसे तपस्याएं वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा भौतिक जीवन में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गृहस्थ भक्तों को 64 माला करने के लिए ज़्यादा जोर देते थे। सन्यासी ब्रह्मचारी उनको ठीक है, वो किया तो भी नहीं है, क्योंकि वो दिन भर उनको लगा देते सेवा में। इतना सेवा में उनको व्यस्त रखते थे कि ऐसा कुछ अलग समय नहीं होता था जब करने के लिए गौड़ी मठ में। वो रात को
जब करना चाहिए।
ठीक है, सभी लोग अभी मन का स्थिति वैसे नहीं है कि हर समय हम लोग भगवान के, कोई भी समय में हम लोग भगवान के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, ऐसा स्थिति नहीं है आजकल। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सारा ऐसा छूट दिया। तो ये दृढ़ व्रत है, ऐसे नियमों को पालन करना, व्रत को पालन करना, तो उपवास व्रत को पालन करना। नमस्संतस्य माम भक्त्या, भगवान के सामने जाके वो दंडवत करते हैं। तो अंतिम समय तक भगवान के वो दंडवत करना चाहिए। आप देखिए प्रभुपाद जी बाहरी तौर पर वो ऐसे लगते थे, बूढ़े लगते थे, फिर भी वो दंडवत करते थे, है ना। तो ऐसा नहीं, आलसी नहीं होना चाहिए, नमस सो दंडवत करने में। तो नमस्संतस्य माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते, इनको महात्मा कहते हैं। ये सब लक्षण है पिछले श्लोक में और इसमें कितने सारे लक्षण बताए बताइए भगवान, कितने सारे। पहले है कि वो दैवी प्रकृति में आश्रय ग्रहण करते हैं और अनन्य भाव से भगवान का सेवा करते हैं, और वो ये जानते हैं कि भगवान सभी का स्रोत है और अविनाशी है, आदि और अविनाशी है, तीन हो गया। और सततम कीर्तयन तो माम, चार हो गया। यतंतश्च दृढ़ व्रताः, दृढ़तापूर्वक वो भक्ति सेवा में लगे रहते हैं। और नमस्संतस्य माम भक्त्या, सो भगवान को नमस्कार करते हैं और नित्य युक्त उपासते हमेशा। तो ये महात्मा है, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा नहीं है इस परिभाषा के अनुसार, वो नहीं है, है ना। ऐसा ही सिक्का डाल दिया तो होता नहीं है महात्मा, और महात्मा को बना दिया ना लोग इस देश में। तो भारत क्या है, ऐसा फैक्ट्री है जहाँ पर महात्माओं का सृष्टि किया जाता है, ऐसे गुरु भगवान साधु संतों का सृष्टि करके करके बाहर देश में भी उनको क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है ये है भारत देश, ये एक अज्ञान है भारत का, बहुत सारे अज्ञान है भारत में, ये एक अज्ञान है। ऐसे भारत में अज्ञान का लिस्ट बना के जा सकते हैं आप, ठीक है ओके। सो अगला श्लोक, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा करके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विध विश्व रूप में करते हैं। प्रभुपाद यहाँ पर एक चीज बताते हैं, ये श्लोक क्या है, पिछले श्लोकों का सारांश होता है, ये श्लोक सारांश नहीं, उनका तात्पर्य सारांश है क्योंकि इस तात्पर्य में वो पांच प्रकार के जो उपासना होते हैं उनके बारे में वर्णन करते हैं। तो बताइए कौन कौन से पांच प्रकार के पूजा या उपासना या पांच प्रकार के जो उपासक है उनके बारे में वर्णन करते हैं। इस श्लोक में तीन लोगों के बारे में बताया गया है और पहले दो लोगों के बारे में बताया गया। अन्य देवी देवताओं का पूजा करते हैं, हाँ, और वही देवी देवताओं का पूजा होता है। हाँ, परमेश्वर और अपने आप को एक मान के एकत्वेन उनको कहा गया है ना। तो तो पहले तो महात्मा है जो भगवान को शुद्ध अनन्य भक्ति करते हैं, वो एक वर्ग हो गया। दूसरा वर्ग है वो महात्मा नहीं है लेकिन फिर भी भगवान के शरण में आते हैं, उनको सातवें अध्याय में वर्णन किया गया था ना, चतुर्विधा वजन्ते माम जना सुकृति न अर्जुना आतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वरदर्शवा। तो और इस श्लोक में ये सारांश है क्योंकि या निष्कर्ष है, ये इसमें सभी प्रकार के उपासकों को वर्णन कर देते हैं, अंत कर देते हैं उनका वर्णन को। सो इसमें तीन बताए, पहला एकत्वेन, अपने आप को ही भगवान मानकर अपना ही पूजा करते हैं, उसको अहम रोपासन कहते हैं, अहम रोपासक या। तो जब भगवान कृष्ण द्वारका में लीला कर रहे थे, वो ये योग्य गृहस्थ को कैसे होना चाहिए, वो उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, उनके कार्यकलाप एक तीसरे अध्याय में हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम भागवत से पढ़ रहे थे भगवान के क्या क्या कार्य, सुबह उठ के क्या करते हैं, वो उड़ जाते हैं तुरंत जब है ना, आवाज़ हो जाता है तो मुर्गा का आवाज़ हो जाता है तो फिर उनके रानियाँ अप्रसन्न हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गृहस्थ को कितना अच्छी तरह से अपने स्त्री को आलिंगन करके सोया हुआ तो भी जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त आ जाता है तो तुरंत उठ जाना चाहिए, ऐसे भगवान उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर उठ के हाथ पांव धो के भगवान क्या बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए, ध्यान करने के लिए एक बार कैसे क्या करेंगे वो ध्यान करके, उनको वो वहाँ पर तीसरे अध्याय में वर्णन आता है भगवान इस जगत में कोई प्राप्त करने का कोई वस्तु ही नहीं है और उनसे परे कोई नहीं है तो किनके ऊपर ध्यान करेंगे, किसके लिए ध्यान करेंगे, सिर्फ उदाहरण स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं वो अपने ऊपर ही ध्यान कर रहे हैं, लेकिन कुछ अहम रोपासक लोग वो एकत्व न यहाँ पर जिनके बारे में भगवान बोल रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि भगवान भी अपने ऊपर ध्यान किया इसलिए हम लोगों को भी अपने ऊपर ध्यान करना, लेकिन प्रभुपाद जी वहाँ पर वर्णन करते हैं हमें राधा कृष्ण को ऊपर ध्यान करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, ऐसे करके करना चाहिए। जनरली ये मायावादी लोग ऐसे करते हैं, एकत्वेन या निराकारवादी निर्विशेषवादी लोग, और पृथक्त्वेन बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं का उपासन करते हैं, और बहुधा विश्व पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम, वो ये पूरा ब्रह्मांड को ही, कोई कोई ब्रह्मांड को या किसी किसी पत्थर को पूजा करते हैं, पेड़ को पूजा करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ करते रहते हैं ना लोग, उनको विश्वतोमुख कहते हैं, विश्व रूप का उपासक कहते हैं। इन तीनों में से या पांचों में से सबसे अधम कौन है पता है, एकत्वेन जो अहम रोपासक है वो सबसे अधम है, ऐसे कहते हैं। फिर आगे अहम कर्तुर अहम यज्ञ स्वादाहम अहम औषधम मंत्रोहम एवम, या बोले बोले क्यों बोलते नहीं आप, तो महात्मा दुरात्माओं को वर्णन करने के बाद और सभी प्रकार के पांच प्रकार के उपासकों को वर्णन करने के बाद अभी भगवान और उनके बारे में वो वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर विशेष करके इस श्लोक में वो कैसे कर्मकांड का जो यज्ञ है, वेदों के जो कर्मकांड के विभाग है उसके जो यज्ञ है, जो यज्ञ वर्णन किए गए वो सब कुछ भगवान कृष्ण है, ऐसे कहते हैं अपने आप को, वो मैं ही हूँ बोलते हैं। तो यज्ञों में तो अलग अलग चीज़ होते हैं, क्या क्या चीज़ होते हैं, किंतु मैं ही कर्मकांड है, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति है। सो ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो यज्ञ में ये सब चीज है ना अर्पित किया जाता है ना, अग्नि आहुति घी सब वगैरह, दिव्य ध्वनि मंत्रों का उच्चारण होता है, तो तर्पण किया जाता है, ये सब चीज़ मैं ही हूँ। तो इसके बारे में हम लोग तीसरे अध्याय में चर्चा किया, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मानो ब्रह्मणम होता हूँ ब्रह्मवते न गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि न, ऐसे कहते हैं। तो जब सब कुछ भगवान को अर्पित हो जाता है तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। तो विशेष करके यहाँ पर वो जैसे हम लोग कह रहे हैं विशेष चीज़ों को भगवान को प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं अलग अलग चीज। और भगवान बोलते हैं वो औषध भी है, मंत्र भी है, सो अग्नि हुतम सब कुछ है। तो प्रभुपाद यहाँ पर अग्नि के बारे में बोल रहे हैं, वो पांच तत्वों में एक तत्व है, इसलिए भगवान के वो भिन्न शक्ति है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड के बाद प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्णतः से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए प्रभुपाद कहते हैं यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे देवी देवताओं का यज्ञ संपन्न कर लिया। तो यहाँ पर जब भगवान बोलते हैं मैं यज्ञ हूँ मैं ये हूँ, तो लोग यज्ञ में नहीं लगना चाहिए। प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं कि अहो बतस्व कचतो गरियान यज्ञिवाग्रह वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस्तप जुहूष शशनरार्य ब्रह्मांड चरण नाम ग्रहणती है। जो भगवान के नामों को उच्चारण करते हैं वो पहले सब यज्ञ कर चुके हैं, वेदों का अध्ययन कर चुके हैं, सभी ये सब पालन किया, तपस्या किया, सब कुछ किया। तो अगला श्लोक, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ, मैं ज्ञेय जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ, मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी। तो पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह, ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह, भगवान कृष्ण ही वास्तव में हमारा माता पिता है, वही दाता है वही पितामह है ना। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं। हम भौतिक जगत में बहुत सारा ऐसे माता पिता बना दिया, ये मेरा माता है ये मेरा मिस्ता है करके है ना मनोहर। तो वो भागवत में वर्णन आता है, ऐसे हम लोग असंख्य माता पिता को बनाया, सन ऑफ ए मिलियन मदर्स, ऐसे एक कथा आता है, जो कोटि कोटि या लाखों लाखों माताओं के पुत्र के बारे में वर्णन आता है। तो वास्तव में कौन थे वो, हिरण्यकश्यप, वो कथा बताते हैं ना, हर्षिशो क्या हिरण्य कश्यप, हिरण्य कश्यप दोनों में से एक कथा आप जानते हो, वही हर्षिशो नहीं, वो जो बोलते हैं ना वो मर गया, उनके माता पिता रोते रहते हैं, फिर वो उठ जाता है बच्चा, और बच्चा उठने के बाद वो उनको समझाता है कि कौन माता कौन पिता, मेरे तो वो ऐसे असंख्य माता पिता हुए, वास्तव में कौन है मेरे माता पिता, ऐसे जाके आप अपने माता पिता को मत बोले चित्र के। तो ऐसे बार में आता है, आप जाके अपने माता पिता को ऐसे मत बोले, वो लोग बोलेंगे इस कौन में यही सिखाते आप लोगों को ऐसे ठीक है ना। लेकिन अंदर अंदर जाना चाहिए कि ये सब माता पिता क्या है, बहुत सारे हुए हैं, कुत्ते के जीवन में भी माता पिता हुए हैं, कुत्ता कुत्ती है ना। एक बार एक विद्यार्थी ने ऐसे पूछा, आप बताते हैं कि आप बताते क्या बताते हैं कि भगवान को शरण में जाना चाहिए, ऐसे आप बताते हैं, लेकिन माता पिता को कौन सेवा करेगा ऐसे। भक्ति विकास महाराज उन्होंने बोला आपके पिछले माता पिता एक कुत्ता और कुत्ती है, जाके उनका सेवा करो। सिर्फ ये माता पिता की क्यों सेवा करो, बहुत सारे माता पिता हुए ना, है ना, कितने माता पिता का सेवा करेंगे, है ना, ठीक है ना। ठीक है, वो भी वर्णाश्रम के अंग है, माता पिता का भी ख्याल करना चाहिए तो, लेकिन हमारे कृष्ण भक्ति को वो माता पिता के सेवा के नाम पर कृष्ण भक्ति को त्यागना नहीं चाहिए। तो कभी भी कृष्ण भक्ति को त्यागना, वो प्रमुख चीज़ है हमारे मनुष्य में। तो वास्तव में वही माता पिता है इस जब भौतिक जगत में भी, जो हमारे माता पिता होते हैं वो भी भगवान के पुत्र पुत्री है, बस वही भगवान के अंश है। तो इसे यहाँ पर श्लोकों पर तात्पर्य में समझाते हैं। वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्सामा यजुरेव च, तो विशेष करके ब्रह्मचारियों को ये ज्यादा देखभाल करना चाहिए। तो माता पिता का सेवा के नाम पर ब्रह्मचारी आश्रम त्यागना नहीं चाहिए। वेद्यम पवित्रम ओंकार, मैं वेद्य हूँ, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, वहाँ पर भी वेद्य शब्द आता है ना, वेदों का लक्ष्य कौन है, भगवान कृष्ण। यहाँ पर ज्ञेय आता है हिंदी में शब्द, 13वें अध्याय में भी ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान का जो लक्ष्य है उसके बारे में, और ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। सो ज्ञान का लक्ष्य भगवान कृष्ण है, सो वेदों में उनके बारे में ही गुणगान, वेदे रामायण चैव पुराणे भारतपुत्रता आदो अंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। सो 1:2:28-29, तो ये हरिवंश पुराण में ऐसे ही बताया गया है, तो कि वेद रामायण महाभारत पुराण आदो अंते च मध्ये च सब जगह भगवान हरि का ही गुणगान हुआ है। तो वासुदेव तो वासुदेव 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 वासुदेव, यहाँ पर कृष्ण मय 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 बोल रहे हैं ना, तो सब वही है ना, ठीक है, वही जीवन के लक्ष्य। पवित्र ओंकारम, वेदों में वो ओंकार है, ऋक्साम यजुर्वेद च, और ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद सभी वही है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम, मई लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी। एक चीज मैंने भूल गया, एक चीज भूल गया, वो सततम कीर्तयंतों में ना अंत में प्रभुपाद जी एक चीज बताते, बहुत अच्छे बताते, माफ कीजिए मैं भूल गया, वो नोट किया था लेकिन उसको याद नहीं रहता। तो नित्य युक्त उपासते, तो प्रभुपाद जी फिर से वो बोल रहे कि कैसे भक्ति आसान है, इस जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है, इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति बिता सकता है, वह संसार में किसी भी अवस्था में किसी भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। तो क्या है, आसानी से भक्ति इतना सुगम है, वो आसानी से कर सकते हैं, है ना, वो क्योंकि सुसुगम है, वो क्यों तकलीफ होना चाहिए ब्रह्मचारियों को भक्ति करने के लिए, क्यों तकलीफ होना चाहिए, कोई भी स्थिति में ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी गृहस्थ आसानी से भक्ति करना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति, और हम लोग वो करते करते जीवन किसी भी भाग में, भारत में हो, अमेरिका में हो, कहीं पर हो, हम लोग आसानी से भक्ति करके हम लोग क्या कर सकते हैं, महात्मा बन सकते हैं। तो फिर यहाँ पर तो 18वें श्लोक में, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ, मैं सृष्टि के प्रलय, सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ, ऐसे कहते हैं। तो गति, गतिर भरता, तो भगवान क्या है? वो गति है, गंतव्य है, सर्वोच्च गंतव्य है। तो लोगों को जीवन के लक्ष्य क्या है पता नहीं है, किसको प्राप्त, किनको प्राप्त करना चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य। बहुत सारे लोग बड़े बड़े यहाँ पर भौतिक जगत में बिग शॉट बनना चाहते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, बड़े बड़े क्या है, बड़े बड़े दार्शनिक बनना चाहते हैं, बड़े बड़े राजनीतिक बनना चाहते हैं, मोदी बनना चाहते हैं, है ना, या राहुल बनना चाहते हैं, ओबामा बनना चाहते हैं, ये उनका जीवन का लक्ष्य होता है। सो भौतिक जगत में ऐसे ही जीव हमेशा व्यस्त है। तो भागवत में भी वर्णन आता है, जीव क्या बनना चाहता है, वीर पुरुष बनना चाहता, हीरो बनना चाहता है। और उसका ही भौतिक संसार में उसका हीरोइक एक्टिविटीज क्या है, भौतिक प्रगति के लिए योगदान देता है, लेकिन अंत में ये हीरो एक स्त्री के पीछे जीरो बन जाता है। लेकिन दूसरा हीरो होता है कौन, गोस्वामी, वो हमेशा हीरो रहते हैं ना। तो एनीवे, तो हमें जीवन में क्या बनना चाहिए, क्या लक्ष्य है हमारा जीवन का, हमें पता चलना चाहिए। आजकल लोग बोलते हैं और सोसाइटी इज वेरी फास्ट, हम बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं, तेजी से भाग रहे हो, लेकिन कहाँ भाग रहे हो, क्या गति है आपका, आपको गंतव्य क्या है, वो किसी को भी पता नहीं, पूरा अंधकार में है ना। आज हमारा मुरलीधर लोग बोल रहे, मृत्यु के बाद वो डॉक्टर को उन्होंने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होगा आत्मा का, तो हाँ मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं था, ऐसे बताया बोलते हो। तो जीवन के गंतव्य या मृत्यु के बाद क्या होगा उसके बारे में उनको पता नहीं रहता। गतिर भरता प्रभु साक्षी, तो ये एक वैज्ञानिक भी बताया, आधुनिक समाज किस क्या है, बहुत तेजी से जा रहा है। अब ऐसे तेजी से 200 किलोमीटर पर आवर, इतना तेजी से स्पीड में जा रहे हैं कार में, और 20 मीटर के बाद एक बड़ा पत्थर का दीवार है, क्या होगा, तो यही आधुनिक समाज का गति होगा। वही उनका गति है, क्योंकि वो वास्तविक जो गति है वो बोल गए। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, नते विदु स्वार्थ गति में ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। तो प्रहलाद महाराज जो कहते हैं स्वार्थ गति, हमारा जो असली गति कौन है, भगवान विष्णु, वो किसी को पता नहीं। इसको जानने के न जानने के कारण लोग क्या कर रहे हैं, बहिरर्थ मानिना, ये भौतिक शरीर को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और अंधा यतांधैर उपगीयमाना स्तेपीषु तंत्रा उरिदाम निबद्धः, अंध लोगों को अनुगमन करके गड्ढे में गिर रहे, स्वयं अंधे है, क्या लक्ष्य है पता नहीं है, गंतव्य पता नहीं है, और अंधे लोगों का अनुगमन कर रहे, ये सब दार्शनिक, सभी राजनीतिज्ञ, सब लोग सोचा मोदी को वोट देने से मैं बहुत, हमारा वही अंधा है, वो क्या आपको सही दिशा में लेकर जा सकता है ना, हमारा देश बहुत हो ना सही दिशा में जाएगा, लेकिन सब अंधे हैं ये लोग, है ना। सो ऐसे अंधा यतांधे उपगीयमाना स्तेपीषु तंत्रा उर्दाव, ऐसे प्राकृतिक नियमों में, जटिल नियमों में बंधते जा रहे लोग। तो ये गति को ना जानने के बाद यहाँ पर भगवान बोल रहे मैं ही गति हूँ, तो जो कृष्ण को नहीं जानता है वह पथभ्रष्ट हो जाता है, और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर ब्रह्मपूर्ण होती है। ऐसे अनेक लोग जो देवताओं की उपासना अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते, ये आगे बताने वाले हैं, त्रैविद्य सोम सुरेंद्र लोकम, है ना। तो प्राप्त, किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण है वो नहीं भी है, तो भगवान कृष्ण ही क्या करते हैं, सभी लोगों को भी वो बरता है, पालक है, बिकॉज उनके ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर ही सब कुछ निर्भर रहता है, तो वही आधार है, इसलिए वो पालक है। और प्रभु वो स्वामी है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुँचने का अर्थ है अप्रत्यक्षता कृष्ण तक पहुँचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के तक सीधे पहुँचे। यहाँ पर दो चीज़ों का बारे में वर्णन कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष मार्ग और प्रत्यक्ष मार्ग, सीधा भगवान कृष्ण को सेवा करना या उनके विभूतियों का सेवा करना, तो इसके बारे में आगे आएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना, अविधि पूर्वक हम ऐसे बोलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सेवा करते हैं जो देवी देवता हूँ हम। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सीधे पहुँचें, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति का बचत होगी। दूसरे शब्दों में यहाँ पर भक्ति सेवा का एक और श्रेष्ठतम क्यों श्रेष्ठतर है उसके बारे में बोल रहे हैं। सो उदाहरणार्थ यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर के द्वारा पहुँचने का, पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा ना, चार पाँच ऐसे पांच हम लोग कारण देखे, और इस दूसरे अध्याय में दूसरा श्लोक भी भक्ति का श्रेष्ठतम को वर्णन करता है, और भक्ति एक एलिवेटर के समान है। यहाँ पर एक और कारण बता रहा है, छठा कारण, वाई भक्ति इज सुपर एक्सलेंट या श्रेष्ठतम योग पद्धति क्यों है, इसके बारे में ये भी एक नोट कर दीजिए। इसके उदाहरणार्थ यदि कोई किसी ऊंची इमारत की चोटी के एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़े। सब कुछ कृष्ण की शक्ति के ऊपर आश्रित है, अतः कृष्ण की शरण लें बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है, इसके लिए उनको पालक कहते हैं, भर्ता कहते हैं। कृष्ण परम शासक है, वो प्रभु है, इसलिए उनको परम शासक मानते, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हें ही उन्हीं के शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में वो स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है, साक्षी विटनेस। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषपरः। मैं उपद्रष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ कहते हैं। और निवास प्रभुपाद जी, हम लोग निवास स्थान बनाते हैं, वो सब कृष्ण है, तो कृष्ण चाहते हैं इसलिए हम उस निवास में रह सकते हैं। कृष्ण नहीं चाहते हैं तो उस निवास में हम लोग नहीं रह सकते, है ना, समझ में आ गए। तो इसलिए वो ही निवास है। शरणम सुहृत, तो उनके शरण में जाना चाहिए। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है, अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने रक्षा या अपने कष्टों की विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहिए। आपको बहुत इच्छा है, इच्छा नहीं है, आप पूरी तरह से मुक्त है, आप सब लोग भगवान की शरण में जाना चाहिए। हमें चाह वह जहाँ भी शरण में हमें तो हम चाहे जहाँ भी शरण ले, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव है, क्योंकि कृष्ण हमारे प्रभव प्रलय स्थानम, हमारे उत्पत्ति विनाश और पालक है, परम पिता। ये उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है, सूरत ना शुभ चिंतक, सूरत मतलब मित्र और शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है, अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण हैं। तो सर्व कारण कारणम, तो ये सब जानना चाहिए। ये सभी विष्णु सहस्र नाम में ये सब नाम आते हैं, है ना, है कि नहीं। गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुव्रत, सभी प्रभाव, प्रलय, स्थानम, निदान, बीजम, तो सभी ये आ जाते हैं, है ना। अगला श्लोक, तपाम्यहम वर्ष तपाम्यहम महम वर्षम निग्रहण्याम आई एम ट्रबलिंग यू ऑल आई थिंक ओके निग्रहण्यामुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसश्चाहमार्जुन हे अर्जुन मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ बहुत गोर गर्मी हो रहा है थप जा रहे हैं समझना चाहिए कि भगवान आपको तपा रहे हैं समझ आ गए वो भी भगवान है और पानी बारिश बहुत हो रहा है या बारिश नहीं हो रहा है वो भी क्या है भगवान कृष्ण इसके लिए भी कारण क्या है भगवान कृष्ण है तो अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखरते हैं ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है निग्रहण्या निसृजामि च अमृतम भगवान अमृत है ना तो इसलिए वो या जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु के रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं अमृतम चैव मृत्युश्च सदस्या अहम अर्जुन ऐसे कहते हैं वही मृत्यु है प्रभुपाद कहा करते थे ना जो लोग नास्तिक है उनके लिए भगवान कैसे आते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं उनको भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं हाँ प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं ऐसे कोई व्यक्ति है क्या जो कहते हैं कि मैं मृत्यु में मृत्यु को मानता नहीं हूँ इज देर एनी बोल्ड मैन हु कैन से दैट आई डोंट बिलीव इन डेथ बट देर आर मेनी मैड मैन हु से दैट आई डोंट बिलीव इन गॉड ऐसा कोई ऐसे व्यक्ति है क्या जो मैं मृत्यु को नहीं मानता लेकिन ऐसे बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान में नहीं मानता ठीक है नहीं मानो लेकिन आपको भगवान मृत्यु के रूप में आके दर्शन देंगे ऐसे कहते हैं अमृतम चैव मृत्युश्च सदस्याहम अर्जुन सद असत्याहम अर्जुन सत और असत मैं ही हूं ऐसे कह रहे इसका वर्णन हुआ है ना दूसरे अध्याय में ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टंतः स्थानेयस्तत्व दर्शिति दोनों भगवान की शक्ति है इसलिए मैं हूँ बोल रहे अपरम इतस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतम महाभावो येदम धारिते जगत चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है एवं वृंदावन में दो जो पूजा वाले वंशी वदन वादन करते श्याम सुंदर रूप भी उनके लीला उनके भगवान रूप की ही होती है तो ये भौतिक विराट रूप क्या है वो असत है और भगवान का श्याम सुंदर रूप है क्या सत है अर्जुन त्रैविद्यमां सोम पापू तपापा यज्ञे रिष्ट्वा स्वर्गतिं पार्थयन्ते ते पुण्यमासमासाद्य सुरेन्द्र लोकम अश्नन्ति दिव्यानि देव भोगा जो वेदों का अध्ययन करने तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग की प्राप्ति की गवेश न करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र की पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं जहाँ वे देवताओं का आनंद भोगते हैं यहाँ पर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप का भगवान का सेवा करने का क्या क्या फल होता है उसको भगवान वर्णन कर रहे हैं जो 18वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे थे, सीधा भगवान को सेवा करना या भगवान को अप्रत्यक्ष रूप से, सीधा भगवान को सेवा करना एक एलिवेटर के समान, लेकिन धीरे 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 जाना, वो एक सीढ़ी की एक एक सीढ़ी करके ऊपर उठना है। तो यहाँ पर सकाम कर्मियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो हम लोग इसको चर्चा कर रहे थे, इन श्लोकों को उल्लेख कर रहे थे, कहाँ कहाँ पर, जब हम लोग दूसरा याम इमाम पुष्पिता वाचम प्रवदन जब विपश्चित वेदवादरता पाता नान्य दस्तीति वादिना। तो हम लोग उस पॉइंट पर आएंगे, त्रैविद्यमाम सोम पापूत पापा, त्रैविद्यमाम तीनों विद्याएं मई हूँ, एक तीन विद्याएं कौन कौन से है, 14 विद्या होते हैं, उनमें से तीन विद्याओं के बारे में भगवान बोल रहे हैं, साम वेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ये तीन वेद जहाँ पर कर्मकांड का वर्णन हुआ है, इन तीनों वेदों में कर्मकांड का वर्णन हुआ है। तो वही मैं ही हूँ, या दूसरे शब्दों में उनका लक्ष्य मैं हूँ, लेकिन हाँ उसको अनुशीलन करके, वेदों का ऐसे जो अनुष्ठान है उसको अनुशीलन करके धीरे 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 जाना, ये सीढ़ी को चढ़ने के समान है, या सीधा भक्ति को स्वीकार करना एक लिफ्ट को लेने के समान है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो ये लोग क्या है, सोम पापा पूत पापा, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं बहुत सारे ऐसे त्रिवेदी है, इन तीनों वेदों का अध्ययन करते हैं, ये कुछ क्यों देख रहा, तीन वेदों का अध्ययन करते हैं लेकिन भगवान को जानते नहीं है। नहीं है, वो नाम त्रिवेदी रख लिया उन्होंने, है ना, ऐसे गोस्वामी होते हैं ना, गृहस्थ जीवन बिताते हैं लेकिन गोस्वामी कहते हैं ऊपर, है ना, ऐसा है। तो वास्तविक त्रिवेदी नहीं, जो भगवान को जानते हैं वही वेदी है, वास्तविक वेदी है, वेद का ज्ञाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, भगवान इनको क्या किया, वेदवाद रता बता, कामात्मा ने बताया उनको, अविपश्चित बताया, कामात्मा ने स्वर्ग परा जन्म कल्म फल प्रदान क्रिया विशेष बोलाम भोग ऐश्वर्यम गति प्रति। ये लोगों को अन्य, वो कहते इसको छोड़कर अन्य कोई वेदों में कुछ नहीं है, यही प्रमुख चीज है वेदों में, इसलिए वो लोग क्या करना चाहते हैं, सोम पाप पूत पाप, सोम रस पीना चाहते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं और क्या करते हैं, फिर सुरेंद्र लोक पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोक, पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, या वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो ये क्या है, ये अप्रत्यक्ष मार्ग है, ये ठीक है। तो अगला श्लोक, ते तम भूत, यहाँ पर एक और पॉइंट माफ कीजिए, त्रिवेदी भगवान को नहीं जानते हैं, लेकिन जो भक्त लोग क्या है, वो हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करते हैं और साथ साथ में भगवान को भी जानते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग चर्चा किया ना, यावान अर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विचार। जो ब्राह्मण होते हैं वो जानते हैं, या वेदों का सार जो जानते हैं उनको वेदों के सही फल प्राप्त होते हैं। वहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में, इस कलयुग में कोई वेद और वेदांत को नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना चाहिए, तभी हम लोग भगवान को समझेंगे। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते करते उसके साथ साथ भगवान कृष्ण को वास्तव में समझने का प्रयास से होता है। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने का प्रयास से होता है। तो भक्ति कैसे होता है, ऐसे होता है, क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, डिवोशनल सर्विस बिगिन्स, वो आरंभ कहाँ से होता है? हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना चाहिए, साथ साथ में भगवान को जानना चाहिए, इसलिए हम लोग ये भगवद्गीता पढ़ रहे हैं। भगवद्गीता अध्ययन करने का क्या अर्थ होता है? हरे कृष्ण महामंत्र के साथ साथ भगवान को जानने के लिए कोशिश करना चाहिए, तभी भक्ति आरंभ होता है। सिर्फ आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं लेकिन वो कृष्ण का क्या परिभाषा है, वो कौन कृष्ण को आप पुकार रहे हैं वो जानते नहीं है, तो क्या हो जाता है? वो व्यर्थ हो जाता है, भक्ति होता नहीं है, है ना। हरे कृष्णा, राधा कृष्ण को पुकार रहे हैं, हरे कृष्णा मतलब कौन राधा को पुकार रहे हैं? वो बार बार के पत्नी राधा को पुकार रहे हैं या जो भगवान के अंतरंग शक्ति है उनको पुकार रहे हैं? कृष्ण कौन कृष्ण को पुकार रहे हैं? तो इसलिए साथ साथ में हमें भगवान को जानने के लिए कोशिश, उनकी शक्तियों को जानने के लिए कोशिश करना चाहिए, इसलिए ये सब अध्ययन चल रहा है। क्यों दिन भर आपको बिठा बिठा के कुछ सुना रहे हैं? आशा करते हैं आप जान सकेंगे, ठीक है। तो अगला श्लोक, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्यमर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मानुपपन्ना गतागतम काम कामालभन्ते। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके परम कर्म उनके पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाते हैं तो वे स्मृत्य लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीन वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। जैमिनी और यज्ञवल्क्य के अनुयायियों का यही स्थिति होता है, वो बार बार इस भौतिक जगत में वापस आते हैं। तो ये यज्ञ करके स्वर्ग लोक जाना और इंद्र तृप्ति करके वापस आना कैसे है? आजकल लोग है ना वो कंपनी में बहुत मेहनत करते हैं ना, मेहनत करके 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 पैसा इकट्ठा करते हैं और वो अलग अलग ट्रांसपोर्ट कंपनीज एडवर्टाइज देता है, हॉलीडेज इन सिंगापुर, हॉलीडेज है ना स्विट्जरलैंड, ऐसा वो हॉलीडे मना के अपना पैसा हो जला के फिर ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम पुण्य क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति फिर से मर्त्य लोक में वापस आ जाते, ऐसा है। ये कंपनी में काम करना मतलब एक धर्म को पालन करने या पुण्य कर्म में पालन करने के समान है, उसके लिए तनख्वाह मिलता है ना, ऐसा है। या प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप लोग ऊंचा लोक में भी जाएंगे यांत्रिक दृष्टिकोण से, मैकेनिकल वे यंत्र के माध्यम से, फिर से उनको आपको वापस आना पड़ेगा। चीनी पुण्य मरते लोग आपको वापस भेजे जाएगा, तो वास्तव में वो जा नहीं सकते हैं लेकिन जाएंगे तो भी वापस आ जाएंगे। इसका क्या अर्थ होगा? बार बार ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर नीचे करना, वो कैसे? प्रभुपा जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, वो बच्चे खेलने के लिए जाते हैं ना वहाँ पर, हाँ क्या बोलते हैं उसको,
मेरी गो राउंड
ऐसा है। वो ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, ऐसा है। स्वर्ग जाना वापस आना, स्वर्ग जाना वापस आना, कुछ काम का नहीं है ये जन्म मृत्यु के लोक में। तो दूसरे शब्दों में पुण्य कर्म भी क्या है? अशुभ ही है अंत में। पुण्य कर्म भी हमें इस भौतिक जगत को बांध देते हैं, वो हमें मुक्त नहीं करेंगे। पाप और पुण्य को त्याग देना चाहिए और सिर्फ कृष्ण भक्ति को करना चाहिए, तभी हम लोग इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएंगे। तो वो आगे के श्लोक में, ये आगे के 22वां श्लोक से अंत तक प्रभुपाद जी भगवान क्या बोल रहे हैं, वो कितने भक्तों को प्रेम करते हैं, विशेष करके उनका जो भक्त वत्सलता जो गुण है वो हमें यहाँ पर समझ में आता है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्ययोगयुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। ये कैसे भक्त है? अनन्य चिंतयन्तो माम, तो अनन्य भाव से, अनन्य भाव का अर्थ है 2400 घंटा वो नित्य उपवास, नित्य अभियुक्ता नाम, मतलब 2400 घंटा वो लगे रहते हैं। कैसे? एक न एक भक्ति के कार्य में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आवत। तो ऐसे लोगों का मैं योगक्षेमम वहाम्यम, योगक्षेमम मतलब उनमें जो नहीं है वो मैं लेकर आता हूँ और जो नहीं है उसका रक्षा करता हूँ, ऐसे कहते हैं भगवान। LIC आपको योगक्षेमम नहीं करेगा, भगवान करेगा, भगवान करेंगे, है ना। योगक्षेमम वहाँ में हम मिलते हैं वो लोग, उनके बारे में उनका मृत्यु का ही उनको चिंता है ना, वो उनका अश्योरेंस नहीं है, क्या दूसरों का अश्योरेंस या इंश्योरेंस क्या करेंगे वो, है ना। दूसरों को कैसे रक्षा करेंगे वो, है ना। सिर्फ ये सब चीटिंग है सब, ये धन 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 मतलब क्या है, ये इन्वेस्ट करना निकालना इन्वेस्ट करना सब सिर्फ सिर्फ गैम्बलिंग चीटिंग है ना। ये प्यान्य ओ या उसके प्यार, तो ऐसे भक्तों लोग करते हैं। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे, अर्जुन आचार्य का एक भक्त थे, महान भक्त, वो इसके ऊपर जब टीका लिख रहे थे, उन्होंने सोचा कि भगवान को क्यों करना चाहिए, हाँ है ना, भगवान उदासीन है, ये सब चीज़ वर्णन हुआ है ना इससे पहले, भगवान को कुछ लेना देना है नहीं भौतिक जगत में, तो और भगवान अपना क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है उनके द्वारा सभी जीवों को तो पालन कर रहे हैं, इसलिए क्यों भगवान भक्तों का योगक्षेम देखना चाहिए। इसलिए वहाम्यहम को उन्होंने क्या कर दिया, खराम्यहम कर दिया, मैं खरवा लेता हूँ या योगक्षेम देख ना दूसरों के द्वारा ऐसे। लेकिन उस समय क्या हो गया, वो ऐसे करके चले गए वो, तो उस समय दो बालक उनके घर में आए, एक सांवले रंग के थे एक सफ़ेद रंग के थे, और दोनों आ गए और बहुत सारा चीज़ लेकर आए थे वो। वैसे अर्जुन आचार्य बहुत ही गरीब थे, वो बाहर गए भीख मांगने के लिए, ब्राह्मण तो ऐसे करते हैं, गरीब में वैदिक संस्कृति मतलब क्या है, वो स्व इच्छा से गरीबी को स्वीकार करना, वही वैदिक संस्कृति है। क्यों? एक ऊंचा उद्देश्य के लिए, क्योंकि ज़्यादा साधन बढ़ा दिया तो इंद्र तृप्ति का जो यू नो बुखार है वो बढ़ जाता, चढ़ जाता, इसलिए स्व इच्छा से ऐसे ऐसे स्थिति को वो लोग स्वीकार करते थे ब्राह्मण लोग। तो और प्रभुपाद जी वो कहते ना, एक राजा कृष्णचंद्र राजा थे, उनके राज्य में एक ब्राह्मण थे, बहुत ही गरीब थे, उनके पास गए वो राजा और बताया, आप कुछ लीजिए हमसे, हम कुछ करना चाहते हैं आपको, ऐसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इतना गरीब, मैं तो गरीब नहीं हूँ ऐसे बोल रहे, मेरे शिष्य जो है वो जाके भीख मांग के कुछ अन्न कुछ राइस वो इकट्ठा करते हैं, और मेरा पत्नी पीछे कोई ऐसे वृक्ष से कुछ पत्ते लेकर उसमें मिला के उसको पका देती है और हम आनंद से खा लेते हैं। तो ये ब्राह्मणी का कल्चर, सरल जीवन बिताना, बहुत ही तब जाके हम लोग ऐसे आध्यात्मिक जीवन के बारे में चिंतन मनन कर सकते। तो ये भारत की संस्कृति होती है, प्रभुपाद जी इसको बता रहे थे वृंदावन में, आप दुनिया में इतने अड़िए अमीर अमीर लोग हैं, बहुत सारे चीज़ों में लगे हैं, बहुत सारे है ना, आप अमीर होने से ऐसा नहीं कि आपका कर्म खत्म हो जाते हैं और ज़्यादा आप व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन यहाँ वृंदावन में लोग क्या है, बहुत ही गरीब लोग हैं, है ना, तो वो हर रोज सुबह शाम क्या है, इतने सारे मंदिर को भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन अमीर इतना वो अमीर ही है कि वो भगवान के पास जाने के लिए भी उसके पास समय नहीं आता, इतना व्यस्त, तो इसका क्या फ़ायदा है ना, इंद्र तृप्ति का बुगार क्यों चढ़ाना चाहिए। एनीवे, तो ये गरीब थे, वो बाहर गए भीख मांगने के लिए, उस समय ये दोनों आ गए, बहुत सारे चीज़ लेकर आए, वो घर को खटखटा के अंदर घुस गए वो, और जल्दी सभी उतार के चीज़ों को अलग अलग जो भी उनके घर के लिए चाहिए वो जाने वाले थे, इनको देखकर उनके पत्नी को बहुत वो आकर्षित हो गए, दोनों सुंदर बालक थे, रुकिए रुकिए कहाँ जा रहे हो आप दोनों ऐसे, नहीं 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 आपके आचार्य आ जाएंगे तो हमें और पिटाई करेंगे ऐसे, क्या आचार्य पिटाई कर रहे, तो फिर उन्होंने दिखाया कि पिटाई किया, क्योंकि उन्होंने काट दिया था इसको खरम वहाँ में उनको। तो इसको देखकर उनको बहुत गुस्सा हो गया उनकी पत्नी को। तो वो क्या किया, उन्होंने अच्छे अन्न पका के वो खाना आरंभ कर दिया। और आचार्य आ गए और देखते एक ये स्त्री क्या है, मेरे से पहले खा रही है, ऐसे कैसे आज खा रही है, ऐसे बहुत गुस्सा हो गए थे। इतने सुंदर बालक को आप ऐसे दुष्ट कैसे बन गए, आप ऐसे उनको पिटाई करते हैं आप ऐसे। सामान्यतः पत्नी क्या है, पति के बाद खाती है, वो उच्चिष्ट खाती है, तो आप ऐसे कैसे करते हैं, क्या किसको मारा हूँ क्या बोल रहे हो तो? हाँ, वो दो सुंदर बालक आए थे तो उन्होंने ये सब चीज़ देकर गया, उनको इतने सारे भारक बोझा भी वो भेज दिया आपने, वहीं कहाँ से भेजा बिग मांग के कितना मिलेगा आपको है कि नहीं? तो फिर उनको समझ में आ गया कि भगवान ही सब कुछ लेकर आते हैं, स्वयं बोले वहाँ पर स्वयं भगवान आए थे, योग क्षेम महाम स्वयं आए थे, वो दूसरों को भेजा नहीं भगवान। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो इसके ऊपर टीका करते हो वो चैतन्य शिक्षामृत है ना, उसके ग्रंथ में आरंभ में वर्णन करते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, अनन्य भक्त है, नित्य उपासित है, उनको जो भी चाहिए भगवान स्वयं वो सीधा उनका, वैसे क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान सबका पालन कर रहे हैं, लेकिन जो ऐसे भक्त होते हैं भगवान सीधा उनका पालन करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, ऐसे कहते हैं। तो शुद्ध भक्तों का बोलते हैं, शुद्ध भक्त का क्या परिभाषा है, शुद्ध भक्त वो जीव है वो शाश्वत रूप से भगवान को समर्पित रहता है। वो शरणागति के छह अंगों के अनुसार, अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोत्रत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो ये छह लक्षण है, ऐसे भक्त जो ऐसे छह अंगों के युक्त शरणागति शरणागत रहते हमेशा भगवान के, उनको अनन्य भक्त कहते हैं, अनन्य चिंतयंतो मां। तो ऐसे भक्तों को भगवान सीधा वो ख्याल करते हैं, देखभाल करते हैं, वो अपने विस्तार के द्वारा नहीं करते हैं, वो सीधा करते हैं। तो ये इसका अर्थ है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारका में गए अपने कुछ शिष्यों के साथ, और वो दोपहर तक गए वो, लेकिन बहुत ही वो क्या हो गए थे, थक गए थे सभी धूप के कारण वगैरह। तो लेकिन उनको एक जगह रहने के लिए, वासस्थान रहने के लिए ढूंढने के लिए, उस समय तो ऐसा मोबाइल नहीं होता, आप पहले बुकिंग कर दो सब कुछ ऐसे। तो रहने के लिए क्या हुआ, उसको ढूंढते ढूंढते शाम हो गया, वहाँ पर शाम हो गया, और रहने का जो वासस्थान भी है वो बहुत ही बुरा स्थिति में था। तो भक्ति सिद्धांत सब चौक, यहाँ पर मनुष्य रहने के लिए योग्य नहीं है, अगर यहाँ पर नहीं रहेंगे हम वापस रेलवे स्टेशन में जाएंगे, वहाँ पर जो यू नो होता है ना वो गेस्ट हाउस, वहाँ पर रहेंगे कर। तो फिर अभी शाम हो गया, रात हो गया, उस समय तो रात हो गया तो सभी कार्यकलाप बंद हो जाते थे। तो किसी एक फिर से एक रिक्शा वाला या ठांगे वाला को, रिक्शा वाला को घोड़े का रिक्शा होते थे उस समय का, तो उसको ढूंढने के लिए अभी समय लगना लगा, कोई भी तैयार नहीं थे वहाँ जाने के लिए उस समय। और अंत में एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, वो उनको लेकर जाते हैं वहाँ पर आके वो कुकिंग करना शुरू करते उस समय, क्योंकि बहुत भूखे थे, थके थे सब लोग, और इतना वो थक गए थे, और वो जल्दी जल्दी में वो अपना कार्य ये सभी करके वो विश्रांति लेना चाहते थे। वो उस व्यक्ति को भूल ही गए, बूढ़े व्यक्ति को। तो फिर उस कुछ एक दो घंटे के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको पूछा, उनके प्रमुख शिष्य को, क्या आपने उनको कुछ पैसा दिया, ऐसे पूछा। तो तब उनको याद आ गया मैंने पैसे ही नहीं दिया। फिर बाहर वाकई जाके देखते हैं वो नहीं है। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको जाके उनको ढूंढ के पैसा देकर आओ ऐसे तो फिर उनको चलना पड़ा।
तो बहुत ढूंढा ढूंढा उन्होंने सभी जगह सबको पूछा, सभी लोगों ने बताया ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। बोले कौन थे वो? भगवान थे। तो ऐसे जो अनन्य भक्त होते हैं उनको भगवान ख्याल करते हैं, देखभाल करते हैं। ये संत में प्रभुपाद योग शब्द का योगक्षेमम, तो योग मतलब क्या होता है, जो नहीं है उसको लेकर आते हैं भगवान, और क्षेम मतलब जो है उसका रक्षा करते हैं, लेकिन उसका अंदरूनी अर्थ बताते हैं यहाँ पर। यहाँ योग कहलाता क्या होता है, ऐसे भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुँचता है। तो ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, श्रवणम कीर्तनम भाव सेवनम, जिसे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, यह योग कहलाता है। तो भगवान के साथ मिल जाना उसको योग कहते हैं, है ना, वो अंदरूनी अर्थ है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण, जिसके बारे में और आगे विस्तार में बताएंगे। मैं उनका रक्षा, उनका कभी नाश नहीं होता है। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। ये योगक्षेम असली योगक्षेम है ना। भौतिक चीज लाना रक्षा करना वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। तो यहीं पर रुकेंगे, आगे इसको कल सुबह बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।
कई बार हम ऐसा कहते हैं कि भगवान जब भी आते थे शास्त्र में, तो ऐसे कई किसी न किसी गाँव में कोई ऐसे भक्त हुए जैसे अभी डाकुर में भी ऐसा होता ना, तो उसको कैसे समझना है? जब हमें उदाहरण देता है तो हमें क्या कहना चाहिए, कैसे संभव है भगवान आते हैं या नहीं आते हैं? क्योंकि हम कहते हैं भगवान आएंगे तो शास्त्र में लिखा है।
क्या आ सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सब जगह विद्यमान है, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग जो प्रचार करते हैं वो शास्त्र से आधार पर करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कहानियाँ हो सकते हैं, ठीक है,
कॉलेज के बाद में भाई
या
और इसी तरह से
जैसे
भी गांव में जाएंगे प्रचार करने के लिए, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे कुछ साल पहले ऐसे कृष्ण की भक्ति की,
हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन हम लोग परंपरा को पालन करेंगे, बस हमारा वो मार्ग है। ठीक है,
सामान्य